चार्य अष्टोत्तर सरस्वती श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
भगवद गीता एज इट इज चैप्टर 7 नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट टेक्स्ट 30 साधि भूतादि दैवं माम साधि यज्ञं च ये विदु प्रयाण काले पिचा माम ते विदुर युक्त चेतसा। Translation by Srila Prabhupada. Those in full consciousness of me, who know me, the Supreme Lord, to be the governing principle of the material manifestation of the demigods and of all methods of sacrifice, can understand and know me, the Supreme Personality of Godhead, even at the time of death. ओम अज्ञानति मिरंदस्य ज्ञानंजनं सलाकया चक्षुर्मीलितमेनं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकासस्वामीति नाम्ने। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशे तारणे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो ये इस अध्याय का अंतिम श्लोक है और प्रभुपाद तात्पर्य में पूरे जो सातवां अध्याय है उसको समराइज कर रहे हैं और सातवां अध्याय किस तरह से आठवें अध्याय से लिंक है इसके बारे में इस श्लोक में बताया गया। अलग अलग शब्द आए हैं, साधि भूत, साधि दैव, साधि यज्ञ है ना, प्रयाण कालेपी। तो ये जो भगवान यहाँ इस श्लोक में बता रहे कि साधि भूत है ना या आदि दैवम, तो यही प्रश्न अर्जुन जो है आठवें अध्याय के प्रारंभ में पूछेंगे है ना कि किम तद ब्रह्मम किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम आदिभूतम चा किम प्रोक्तम आदिदेवम किम उच्यते है ना, कि आदिभूत क्या है आदिदेव क्या है ना। तो ये लिंक है ये श्लोक। तो ये साधि आदिभूत आदिदैव आदियज्ञ क्या है ये हम कल डिस्कस करेंगे। और प्रयाण काले पी चामा के अंतिम समय में अगर कोई मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है तो उसकी गति क्या होती है, तो वो भी अर्जुन पूछेंगे यहाँ पर। तो वो फेमस श्लोक आएगा, यम यम वापी स्मृतम भावम तजंते अंत कलेवरम। तो जिस जिस भाव से शरीर को त्यागता है वही चित वही भाव मृत्यु के पश्चात प्राप्त करता है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है पहले भी हमने कई बार ये चर्चा किया है, लेकिन बार बार इस पर चर्चा होनी चाहिए कि जो एक है ट्रेडिशनल मायावाद और एक है मॉडर्न मायावाद, है ना, कि जो मायावाद फिलॉसफी है वो सब हम सबके अंदर, सब लोग मायावाद से ग्रस्त है। तो ये ट्रेडिशनल मायावाद क्या है और मॉडर्न मायावाद क्या है? ट्रेडिशनल हो सकते हैं पारंपरिक और आधुनिक मायावाद। तो अभी हम सब लोग आधुनिक मायावाद से ग्रस्त हैं, तो ये ट्रेडिशनल मायावाद कैसे प्रारंभ हुआ, किन्होंने स्टार्ट किया? आदि शंकराचार्य। शंकराचार्य तो अभी भी आदि शंकराचार्य। तो जब वेदों के नाम पर, वेदों का उपयोग कर कर लोग पशु बलि, है ना, पशुओं को मारना अवैध रूप से और बहुत अनावश्यक मांसाहार में लिप्त होना, ये कहकर कि ये शास्त्रों में दिया हुआ है, शास्त्रों में दिया है। कुछ लोग बोलते हैं कि मनु संहिता में तो दिया है मांस खाना चाहिए, तो दिया है, सही बात है। मान लीजिए कोई 20 सिगरेट पीता है, डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने बोला कि अभी से आप 15 सिगरेट पिया करो, है ना, तो बोलेंगे देखो डॉक्टर तो बोल रहा है सिगरेट पीना चाहिए, इसीलिए मैं सिगरेट पी रहा हूँ। लेकिन वो डॉक्टर क्यों बोल रहा है? जिससे वो सिगरेट की आदत धीरे धीरे कम हो सके। तो जहां जहां मनु संहिता में या वेदों में इस चीज के बारे में बताया गया कि आप मांस को खा सकते हैं, कई लोग कोर्ट निकाल देते हैं, कोर्ट भेजना चालू कर देते, देखो मनु संहिता में दिया मांस का। लेकिन शास्त्रों में अंततः अगर ये चार चीजों को प्रोत्साहन दिया है ना, मांस खाना या जुआ खेलना या सारा पीना या अवैध सम, अगर कहीं दिया भी है तो अंततः इन सब चीजों से मुक्त होने के लिए दिया। जैसे डॉक्टर ने बोला किसी के दांत खराब है, चॉकलेट खाने की आदत है, तो 10 चॉकलेट खाता है तो बोलेंगे 8 खाओ 7 खाओ, धीरे धीरे उद्देश्य क्या है, वो चॉकलेट खाना बंद कर। तो जिसको मांस खाने की बहुत ज्यादा आदत है ना, अपनी जीव की संतुष्टि, वो जीव की लालसा से वो रोक ही नहीं सकता है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, ठीक है आप काली को अर्पण करो, इस दिन खाओ, है ना, और इस स्लॉटर हाउस नहीं होना चाहिए, बिकना नहीं चाहिए मांस। आजकल क्या हो गया, बंगाल में जाएंगे तो जहां मांस बिकता है, जो कसाईघर होते हैं, तो वहां पर दुर्गा जी की फोटो भी होती है, तो आपको घर में अर्पण करने की जरूरत नहीं, दुकान में अर्पण हो जाएगा, है ना, अर्पण करके अब घर पे लेके आओ, पहले से अर्पण। तो ऐसा नहीं, शास्त्र में ये नहीं बताया पब्लिकली या बड़े स्तर पे स्लॉटर हाउस। तो वो जो रिस्ट्रिक्ट किया गया है, जिससे उसकी जो इंद्रिय तृप्ति की भावना है वो भी पूरी हो जाए और धीरे धीरे उसका शुद्धिकरण भी हो जाए, तो वो जो पर्पस था शास्त्रों का वो उन्होंने हटा दिया और मांस ऐसे खाना चाहिए। तो फिर कौन आए, भगवान बुद्ध। बुद्ध ने देखा कि लोग शास्त्रों को समझेंगे नहीं, शास्त्रों को समझने नहीं वाले, क्योंकि शास्त्र समझने के लिए थोड़ा हृदय का शुद्धिकरण चाहिए। उन्होंने क्या बोला, शास्त्रों को छोड़ो और मेरी बात मानो। तो उन्होंने ट्रिक कर दिया, मेरी बात मानो बोला शास्त्रों की बात मानो, शास्त्रों को रिजेक्ट कर दिया उन्होंने और बोला मेरी बात सुनो, अहिंसा परमो धर्म, यानी जीरो शून्यवाद। तो किसी तरह जो शास्त्रों की जो बलि देना है वो क्या हो गया, बंद हो गया। लेकिन क्या हुआ कि लोग शास्त्रों को नहीं मानते थे, वेदों को नहीं मानते थे, तो धीरे धीरे क्या हो गया, नास्तिक बनना चालू हो गया, है ना, वेद ना मानिया बौद्ध हुए नास्तिक, है ना, जो वेदों को नहीं मानते शास्त्रों को नहीं मानते वो नास्तिक। तो फिर आदि शंकराचार्य आया, और आदि शंकराचार्य का क्या कंट्रीब्यूशन था कि जो लोगों की शास्त्रों से वेदों से श्रद्धा चली गई है उसको दोबारा स्थापित करना, तो उन्होंने वेदों को शास्त्रों को स्थापित किया कि यस ये ऑथराइज्ड है, इनके नियमों को हमको पालन करना है, ब्रह्म क्या है जगत क्या है वो बताया, लेकिन जो शास्त्रों का उद्देश्य है उसको हटा दिया उन्होंने, है ना, शास्त्रों का उद्देश्य क्या हटा, क्या कर दिया, ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या, है ना, निर्विशेष, क्योंकि ये भौतिक जगत में बहुत सारी विशेषताएं हैं, अलग अलग रूप हैं, बहुत सारी विविधताएं हैं, तो हमने इन विविधताओं को भोग करने का प्रयास किया, इन अलग अलग रूपों को एंजॉयमेंट करने का प्रयास किया, अलग अलग तरह से भोग करने का प्रयास किया। लेकिन क्या हुआ, जब हमने इतना भोग किया तो हमें दुख आया, है ना। अगर कोई बोले दुख आएगा नहीं, इतना भोग करते जाएंगे, लेकिन बुढ़ापा तो आएगा ना धीरे धीरे, मृत्यु तो आएगी ना। तो यहां पर हमने संसार में जो जितनी भी विविधताएं देख रहे थे उससे हमने भोग किया, हमको एंजॉयमेंट नहीं मिला। तो उससे लॉजिकली क्या बनता है कि एक ऐसी जगह होना चाहिए जहां पर विविधताएं ना हो, जहां पर कोई विशेषताएं ना हो, जहां पर ये कोई वैरायटीज, अलग अलग रूप, अलग अलग गुण, अलग अलग नाम कुछ भी ना हो, जस्ट एक इम्पर्सनल निर्विशेष। तो ये जो लॉजिक से शास्त्रों को समझना प्रारंभ किया, शास्त्रों को लॉजिक से नहीं समझते, शास्त्रों को भी वो जो गुरु शिष्य परंपरा की कृपा है उसके द्वारा शास्त्रों को समझा जाता है। तो अभी उन्होंने लॉजिक से समझा और लॉजिक से इस निष्कर्ष पे आए क्योंकि इस जगत में विविधताएं हैं, वैरायटीज हैं और साथ में दुख भी है, तो एक ऐसी जगह होना चाहिए जहां सुख हो और विविधताएं ना हो। तो उन्होंने बोला ब्रह्म में सत्य जगत में था, और ब्रह्म में क्या है, निर्विशेष। तो माइनस से चालू हुआ कि वेदों को नहीं मानते थे, तो माइनस से जीरो आ गया, शून्यवाद, और जीरो से अभी प्लस बना गया जो आदि शंकराचार्य ने किया। तो आदि शंकराचार्य का मेन जो उद्देश्य था लोगों की शास्त्रों में श्रद्धा बैठ जाए, लेकिन उद्देश्य को हटाकर उन्होंने क्या किया, निर्विशेष तक पहुंचा दिया। लेकिन जो वो जो मायावादी हैं, शास्त्रों के नियमों को पालन करते हैं, सुबह उठना है, है ना, उनका जो भी जप है वो करना है, वेदों का पाठ करना है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, है ना। फिर कुछ लोग आजीवन ब्रह्मचारी रहते हैं, कुछ लोग गृहस्थ आश्रम में जाते हैं, फिर गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ में जाते हैं। तो जो भी शास्त्रों के बाहरी जो आवरण है ना, आउटर कवरिंग है, वो सब कुछ वो पालन कर रहे हैं, लेकिन मिसिंग क्या है, गोल, परम सत्य की धारणा। इसलिए बोलते हैं कि जो वैष्णव फिलॉसफी है और जो निर्विशेष बाद है वो मुक्ति तक एक ही है। मायावादी भी बोलते हैं कि जगत बेकार है, सब कुछ क्षणिक है, है ना, यहाँ भोग करने की जरूरत नहीं है, वो भी बोलते हैं ये शरीर, है ना, स्टूल, यूरिन, बोन्स, मसल्स, बोन मैरो, इन सब से मिला है, इसमें पूरा दुर्गंध है, सब मायावादी डिस्कस करते हैं। जो हम डिस्कस कर रहे थे वो पिंगला की स्टोरी में, वो भी करते हैं, मायावादी भी डिस्कस करेंगे। लेकिन समस्या क्या है कि जब हम भौतिक जगत को त्यागेंगे उसके बाद क्या होने वाला है, वो मायावाद में मिसिंग, और वैष्णव में क्या है, वैकुंठ है, अलग अलग धाम है, या फिर गोलोक वृंदावन, है ना। तो ये जो मायावाद का प्रभाव ये सब जगह फैला हुआ। आप देखो किसी से पूछो, बोलेंगे आप लोगों का लक्ष्य क्या है, वो अपने आप बोलेंगे मोक्ष। तो मोक्ष की धारणा क्या है, मोक्ष मतलब सब एक्टिविटी बंद हो जाएगी, इनएक्टिव हो जाएंगे, एक कोई लाइट है, कुछ भी ऐसा, बस एक वेग धारणा है जिसमें जाके हम बस अभी कोई एक्टिविटी नहीं। तो कोई वहां जाना चाहेगा, वहां पर कोई नहीं जाना चाहेगा, कोई भी नहीं जाना चाहेगा। आपको एक रूम में बंद कर दिया और बस कुछ नहीं करना आपको, बस कोई एक्टिविटी नहीं, तो उसको क्या है, वो मायावाद जैसी। रूम में कितनी देर रहेंगे शांति से, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ तो कार्य करना पड़ेगा ना, है ना। तो जैसे पक्षी है, आपको पिंजड़े में बंद है पक्षी, तो जब पिंजड़ा खोलेंगे तो पक्षी उड़ेगा, तो उसको आनंद प्राप्त होगा। तो जो मायावादियों का आनंद है वो क्या है, इस जगत से मुक्त होकर उनको एक आनंद प्राप्त हो रहा है। पिंजड़े से पक्षी निकला तो उसको आनंद है, अरे इतने सालों से पिंजड़ा बंद था, अभी पिंजड़े से निकला हूं, यस बहुत अच्छा है, उड़ेगा 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 उड़ेगा, फिर क्या होगा, कहीं ना कहीं तो बैठना पड़ेगा, उड़ता तो नहीं रहेगा, तो वो कहीं ना किसी डाल पे आके बैठेगा। तो उसी तरह मायावादी, यस, पूरे नियमों को पालन करना है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है और तपस्या करना है और खाने में ये ध्यान रखना है, मंत्र जप करना है, मुक्त हो गए तो संसार से छूटने का आनंद मिल रहा है। लेकिन वो कब तक मिलेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, इसीलिए फिर से उनका पतन होता है, फिर से वो आके यहाँ हॉस्पिटल खोलते हैं, स्कूल खोलते हैं, सोशल वेलफेयर करते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ करना है, कोई ना कोई इच्छा है। लेकिन आदि शंकराचार्य हैं, वो सब शास्त्रों के अनुसार सब पालन कर रहे हैं। तो अभी ये जो मायावाद है वो धीरे धीरे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और 18वीं सदी में एक व्यक्ति आए जिनका नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। गदाधर चट्टोपाध्याय कौन है? गदाधर चट्टोपाध्याय आगे चल के कौन बने? रामकृष्ण परमहंस। तो अभी जो ये गदाधर चट्टोपाध्याय जो है, ये 1816 या 1819 ये इन्होंने दुनिया में आए, 1836 में, और उसी समय ये साईं बाबा, साईं बाबा का भी 38 में, वो भी करीब करीब उसी समय आए। तो जो रामकृष्ण परमहंस हैं, इन्होंने जो ट्रेडिशनल मायावाद था उसको चेंज कर दिया किसमें, मॉडर्न मायावाद में। अभी वो शंकराचार्य वो क्या बोल रहे हैं, सब कुछ एक है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो जगत तो है ही नहीं, जो आप सब देख रहे हैं वो तो है ही नहीं, है ना, ब्रह्म सत्य है, जगत एक एक है ना। इसलिए जो मध्वाचार्य है उनका विग्रह कैसा है, ऐसे है, दो जीव और भगवान हमेशा एक, एक जीव दूसरा जीव अलग है ना, एक कंट्रोलर है और एक कंट्रोल्ड है ना, दोनों अलग है। तो इसको अद्वैत भी बोलते हैं, अद्वैत बात। तो अभी जो रामकृष्ण परमहंस हैं, उनका क्या दुनिया को देन क्या है, कि जो सब कुछ एक है उन्होंने उसको और आगे बढ़ाया, कि अभी जो ब्रह्म सत्य है सब कुछ एक है शास्त्रों के आधार पर था, लेकिन अभी क्या हो गया, शास्त्रों को भी हटा दिया और बोला सब कुछ एक है, यतो मत ततो पथ, कोई भी रास्ते को फॉलो करो, कोई भी बात को फॉलो करो, कुछ भी करो, सबको पहुंचना वही है। पहले था शास्त्रों को फॉलो करो और फिर निर्विशेष ब्रह्म तक पहुंचो, सब कुछ एक है, ब्रह्म सब एक है। लेकिन अभी क्या हो गया, और उसका अपग्रेडेड एडिशन आ गया, कुछ भी करो, आप वैष्णव हो, आप सेवाइट हो, आप तांत्रिक हो, आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप क्रिश्चियन हो, आप ज्यूइश हो, कुछ भी हो, सबको अंततः पहुंचना उधर ही, कुछ भी फॉलो कर लो। इसलिए वेस्ट में लोग क्या बोलते हैं, वी आर स्पिरिचुअल नॉट रिलीजियस, हम आध्यात्मिक हैं लेकिन धार्मिक नहीं। तो उनकी एक धारणा है बस, एक मेडिटेशन, योगा, थोड़ा सा पढ़ लिया, और मैं आगे बताऊंगा कैसे ये आधुनिक जो पीढ़ी है वो इससे किस तरह से ग्रस्त है ना। तो अभी कुछ भी करो पहुंचना सबको उधर ही, मतलब सपना सबका अपना अपना ओपिनियन है, सब अपने तरीके से चल सकते हैं, एक कोई एब्सोल्यूट ऑथोरिटी की जरूरत नहीं है, कि एक अधिकृत व्यक्ति होना चाहिए, एक ऑथोरिटी होना चाहिए। ऑथोरिटी मतलब जो शास्त्रों की ऑथोरिटी को मान रहे, शास्त्रों की ऑथोरिटी को नहीं मान रहे तो ऑथोरिटी है ही नहीं। तो अभी जो शंकराचार्य ने कहा कि एक ऑथोरिटी होना चाहिए, जैसे उनके मठ है, चार मठ है चारों दिशाओं में, तो उनके एक मठाधीश हैं और उनको लोग फॉलो करते हैं, वो क्या बता रहे हैं, एक गुरु है। लेकिन यहां क्या हुआ, ऑथोरिटी हटा ली उन्होंने, सब अपनी ऑथोरिटी, ह्यूमन राइट्स, जिसके मन में जो भी आए वो करो, किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं। आजकल जो न्यू एज गुरु है ना, जो बोलते हैं किसी को फॉलो मत करो, तो हम बोलना चाहिए आपको भी फॉलो नहीं करेंगे। जो आप बोल रहे हो किसी को फॉलो मत करो, तो अगर मैं किसी को फॉलो नहीं करूंगा तो आपको फॉलो करूंगा। तो ये क्या, इसमें लॉजिकल फैलेसी। तो ये जो आया कि आप किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं, इसको टर्म दिया गया रिलेटिविज्म। रिलेटिविज्म जो आजकल हर जगह फैला हुआ, पूरी दुनिया में फैला हुआ, सबको अपना अपना राइट है, सबका अपना अपना ओपिनियन है, सबको अपने तरीके से जीवन जीने का अधिकार है, किसी को किसी व्यक्ति की सुनने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने अनुसार अपना जीवन जीऊंगा, मुझे पता है मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या बुरा है, क्योंकि ऑथोरिटी हटा दिया। फायदा क्या है इससे, क्योंकि पहुंचना तो सबको एक ही जगह है, तब उनके अनुसार जियो, इनके अनुसार जियो या अपने अनुसार जियो, पहुंचना तो उधर ही है। तो ये क्या हो गया, रिलेटिविज्म आ गया। तो अभी जैसे करीब 2-2.5 साल पहले जो द्वारिका के शंकराचार्य हैं, उन्होंने बोला कि जो साईं बाबा की पूजा है वो गलत है, और उसकी वजह से मीडिया में बहुत सारा हंगामा हुआ है ना, उनके लिए बहुत सारे आरोप लगाए गए। तो उन्होंने क्या लॉजिक रखा उसको, क्योंकि साईं बाबा वैदिक ड्यूटी नहीं है, वेदों में कहीं इसका वर्णन नहीं, ये क्या है, नॉन वैदिक वर्शिप। तो अभी जो शंकराचार्य है उनका पूरा जो फिलॉसफी किसके आधार पर है, वेदों के आधार पर, पूरा वेद से ही कोट कर रहे हैं। तो जो साईं बाबा है वो क्या है, नॉन वैदिक डीटी, तो उनकी पूजा करना क्या है, गलत है। लेकिन उन्होंने किसको, किसकी प्रशंसा किया, रामकृष्ण परमहंस की। उन्होंने बोला कि इन्होंने शास्त्रों को, वेदों को एक बहुत ही बृहद दृष्टिकोण दिया, इन्होंने सबको मिलाया, जो वेदों को, एक वेदों को बहुत कुछ लोग ही समझते थे या मानते थे, फॉलो करते थे, उन्होंने उस दृष्टिकोण को बहुत बढ़ा दिया। और हम खुद देखते हैं कि जो रामकृष्ण थे सम्मान देने की आवश्यकता नहीं है, तो वो कुछ समय मुस्लिम ही बने, मुस्लिम फकीर बने, कुछ समय क्रिश्चियन भी बने, है ना, तंत्र भी किया उन्होंने, काली के उपासक थे, मैं तो काली के उपासक थे, है ना, तो सब भक्ति विनोद ठाकुर से ही मिले। तो सब उन्होंने कहा, देखो सबको आप क्रिटिसाइज क्यों करते हो, इससे एक धारणा क्या आती है, आप दूसरों को क्यों क्रिटिसाइज करते हो, अपना फॉलो करो ना, सब सही है, अपनी जगह सब सही है, बोलते ना लोग, सब लोग अपनी जगह सही है। तो जो रामकृष्ण है उसने इस तरह से सब लोगों से मिला, और सबके जो रिचुअल हैं, सबके जो एक्सटर्नल प्रैक्टिसेस हैं, सब कुछ उसने फॉलो किया। और जो शंकराचार्य है द्वारिका के शंकराचार्य, उन्होंने बोला कि देखो इन्होंने जो वेद है या अलग अलग जो कम्युनिटीज है, अलग अलग धर्म है, उसको क्या किया, सिंथेसिस किया, उसको आपस में हार्मोनाइज किया। लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो उनके उसके शास्त्रों को रिजेक्ट करने की वजह से ही तो साईं बाबा की पूजा हो रही। रामकृष्ण परमहंस ने बोला कि वेदों को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ एक है, जिसके जो रास्ते हैं सब वहीं पहुंचेंगे, अभी मेरा रास्ता साईं बाबा की पूजा करना है। एक तरफ वो बोल रहे हैं कि शास्त्रों को फॉलो नहीं करो, ये तो मत तथोपथ, और जब कोई अगर साईं बाबा की पूजा कर रहा है तो फिर क्या गलत, उनकी शिक्षाओं का तो परिणाम है कि आज लोग साईं बाबा की पूजा कर रहे हैं, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि अभी शंकराचार्य है, बुद्धिमान है, शास्त्रों का अध्ययन किया है, लेकिन वो भी क्या है, मतलब माया से ट्रिक हो, माया ने ट्रिक कर लिया उनको। तो ये अभी जो मॉडर्न मायावाद है इसकी वजह से क्या हो गया है, मटेरियलिज्म बहुत बढ़ गया, भौतिकतावाद बहुत बढ़ गया। क्यों बढ़ गया भौतिकतावाद, कोई तो बताएगा कि मायावाद से भौतिकतावाद क्यों बढ़ रहा है? भौतिकतावाद तो एंजॉय करना है, मायावाद मेरे से मिली नहीं, तो भौतिकतावाद क्यों बढ़ रहा है मायावाद से आजकल? देखो इसीलिए बहुत कम लोगों का स्पिरिचुअलिटी में रुचि है ना, तो क्यों मायावाद से भौतिकतावाद कैसे बढ़ता है?
कोई ऑथोरिटी नहीं फॉलो करना जिनको, जिनको जो करना है वो करें, दूसरा ऐसे होता है कि जो भी करेंगे पहुंचना तो वही है, तो फिर कुछ आए नहीं, सबको अपना अपना इच्छा, कभी कुछ कर लेते, कभी कोई फेस्टिवल आया तो उसमें पार्टिसिपेट कर लिए, कभी किसी की पूजा कर,
हाँ तो अथॉरिटी ना होने की वजह से सब अपने मन से कर रहे हैं,
अपने मन से कर
तो
लेते।
उनको एक मन ये भी आया कि हम भौतिकतावाद को बढ़ा लेते हैं, मटेरियलिज्म को बढ़ा लेते हैं। ठीक, एक आंसर ये हुआ कि अथॉरिटी ना होने की वजह से हमको पता नहीं जीवन कैसे जीना है, तो हम एंजॉय कर रहे हैं बस। और कुछ प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र है, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारे, तो वहां तो हिप्पियों ने तो कभी आदि शंकराचार्य का नाम भी नहीं सुना होगा, तो फिर क्यों प्रभुपाद ने अपना प्रणाम, प्रभुपाद ने खुद लिखा था अपना प्रणाम मंत्र, जनरली शिष्य लिखते हैं अपने गुरु के लिए, लेकिन उस समय उनका ऐसा स्थिति था कि अपने गुरु के प्रणाम मंत्र भी नहीं लिख सकते, प्रभुपाद ने क्यों उसमें स्पेसिफिक मेंशन किया निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारे? पाश्चात्य जगत पूरा निर्विशेष शून्यवाद से ग्रस्त है, तो कैसे ग्रस्त है?
से ही बनाया गया है, तो उसमें लोग अपने आप को फ्री समझते हैं, हम ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं, 6 दिन हफ्ते में वो सब कुछ एंजॉय कर सकते हैं, संडे भी आके प्रेयर में सब कुछ बहुत हो गया, उनका ये फिलोसफी होता है, तो इसी तरह उनका पूरा लाइफ चलता है।
नहीं, प्रश्न ये है कि अगर मायावाद बहुत बढ़ रहा है तो उससे मटेरियलिज्म बहुत बढ़ता है।
मायावाद अल्टीमेटली डिजायर्स है जिसकी आप नीड्स ज्यादा है,
नहीं मायावादी तो बोलते हैं कि इच्छाओं को शून्य करते जाओ, खत्म करते जाओ, इच्छाएं धीरे धीरे खत्म करते जाओ, खत्म करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, और जब दिन जिस दिन इच्छा खत्म हो जाएंगी उस दिन आप ब्रह्म में लीन हो जाओगे, शून्यवाद, सब कुछ शून्य कर दो, शून्य तो हो ही नहीं सकता, ये सबको इच्छाएं खत्म कर दो वो भी नहीं हो सकती, तो इन दोनों की वजह से क्यों मटेरियलिज्म बढ़ रहा है? प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं कि काशी के मायावादी और सारनाथ के बुद्धिस्ट बहुत बड़े मटेरियलिस्टिक, मतलब बहुत बड़े भोगी हैं। तो अभी अगर हम मायावाद देखें, मतलब कुछ शास्त्र फॉलो कर रहे हैं या कुछ तपस्या कर रहे हैं, तो मटेरियलिज्म कैसे बढ़ रहा है? भौतिकतावादी क्यों हो रहे हैं लोग? अभी हो रहा है ना, देखो आप अभी स्मार्ट सिटी आ रही है, धीरे धीरे स्मार्टफोन आ गए हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजीज आ रही, तो क्यों डेवलपमेंट क्यों हो रहा है, इससे मायावाद का क्या संबंध है? रोबोट्स बना रहे हैं लोग, तो ये क्या कहाँ लिंक कहाँ है दोनों? नहीं, सूरज
क्रिश्चियनिटी में तो लगभग 14th-15th century में वहाँ पर लोगों ने कहा कोई सुपरनेचुरल पावर नहीं है, जो भी अपना सेंटर है वो ह्यूमन ही है, जो भी मतलब अगर आप थिंकिंग से जो भी से इनको पूरी कर रहे हो तो सब कुछ है, वो तो 14th-15th century के बाद तो वहाँ पर भी है।
हाँ, नरसेवा नारायण सेवा एक उसका परिणाम है जिससे वो सब कुछ एक है, मतलब जो ब्रह्म है जो परम सत्य है सबके अंदर है, सब परम सत्य, तो जो गरीब परम सत्य उसकी सेवा कर रहे हैं, बीमार परम सत्य उसकी सेवा कर रहे हैं। भगवान गरीब हो गए, भगवान जो लक्ष्मीपति हैं वो गरीब हो गए, भगवान का जो शरीर है सच्चिदानंद वो आज बीमार है।
मायावाद में एक ऐसी फिलॉसफी की
भगवान बनने की उनकी इच्छा, मतलब भगवान में लीन होने की या कंट्रोलर बनने की इच्छा, तो अभी वो चीज एट प्रेजेंट पूरी नहीं हो रही, तो वो सोचते हैं कि भौतिकतावादी लोग हम यहाँ कंट्रोलर बन जाए, इतनी बड़ी बड़ी सिटीज स्कूल कॉलेज खोल खोल के हम कंट्रोल करें सबको, सब
जैसे हम आज देखते हैं फेमिनिज्म, वो भी मायावाद की वजह से, इक्वल राइट्स ये भी मायावाद की वजह से। तो मायावाद अंततः वो धारणा क्या है कि मोक्ष के बाद क्या है, कुछ नहीं, सब इनएक्टिव है। तो कौन करे, कौन मोक्ष चाहे, किसी को चाहिए मोक्ष? हम बोलेंगे आप बहुत मेहनत करोगे, बहुत मेहनत करोगे, 3-4 साल बहुत मेहनत करोगे, उससे क्या होगा, आपके एक रूम में बंद कर देंगे बस, जिसमें आप कोई एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। तो आपने जीवन भर बहुत तप किया, खाने पे कंट्रोल किया, सुबह उठे, तपस्या किया, और क्या हुआ, इनएक्टिव हो गए, मोक्ष मिल गया। तो किसी के जाने की इच्छा होगी वहां पर, कोई जाना चाहेगा वहां पर? कोई नहीं जाना चाहेगा। यार ये जो अध्यात्मवादी है इतना अपने शरीर को कष्ट देते रहते हैं, सुबह उठते हैं, क्या करेंगे, मोक्ष प्राप्त होगा, और मोक्ष से क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला, इनएक्टिव हो जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि हम 8 बजे सोए आराम से, रात में मूवी देखें, घूमने जाएं, बड़ा पाव खाएं, खूब एंजॉय करें। ये देखो लोग ऐसे ही बोलते कि देखो हम तो मजे से जी रहे हैं, तुम ही कष्ट भोग रहे हो, सुबह उठ रहे हो, इतना तपस्या कर रहे हो, बाहर का नहीं खा रहे हो, कितना कष्ट ले रहे हो, किस लिए, इनएक्टिव होने के लिए। इसीलिए कई लोग तरस खाते हैं भक्तों पर, अरे यार देखो कितना अभी इसी उम्र से ही करने लगा है, इसने तो भोग किया ही नहीं। जैसे दक्ष प्रजापति बोल रहे थे नारद मुनि को, ये बच्चों को देखो भटका दिया, इनको भोग करना चाहिए था, तब वो अच्छी तरह भोग करते, प्रवृत्ति में जाते, तो निवृत्ति अच्छी तरह कर पाते। आपने पहले निवृत्ति बता दिया इनको, पहले प्रवृत्ति मार्ग जाते फिर निवृत्ति में जाते, तो क्यों तपस्या करें, कुछ है नहीं वहां पर। लेकिन जब पता चलेगा है ना कि भगवान के धाम, भगवान का धाम है, वहां चिंतामणि स्टोन से बना हुआ है, कल्प वृक्ष है, वहां पे गाय है, वृक्ष है, नदियां हैं, घर हैं, परिवार है, सबका केंद्र श्री कृष्ण है, और यहां पर हमको जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी है, वहां पर सबका जो आध्यात्मिक शरीर है, सच्चिदानंद शरीर है, वहां पे भूख प्यास डर कुछ भी नहीं है। यहां कितना डर है, बहुत ही जगत में चिंता है कि नहीं, कैरियर की चिंता है, वहां कोई कैरियर की चिंता नहीं, वहां किसी भी तरह का कोई डर नहीं, 100% प्लेसमेंट है वहां पर। खाने की कोई कमी, हर मतलब जो भी हमको चाहिए सब कुछ है वहां पर, तो वहां नहीं जाना चाहेंगे। तो वो मायावादी क्या करते हैं, उस सीन को हटा देते हैं, फिर किसी का इंटरेस्ट नहीं होता, क्या करें भक्ति का। तो अभी हमें कोई भौतिक जगत में कोई भी पोस्ट है या कुछ भी प्राप्त करना है, तो इसके लिए हमको इतनी मेहनत करना पड़ता है। तो अगर आध्यात्मिक जगत जाना है, तो आध्यात्मिक जगत के लिए कितना हमको परिश्रम करना हो, कितनी मेहनत करना हो, है ना। तो अभी जो ये जो मॉडर्न मायावादी है, न्यू एज गुरु है, ऐसे ही करते हैं, ऐसे श्री श्री, अभी श्री श्री का जो बिजनेस है थोड़ा डाउन चल रहा है, पहले ही बताया, श्री श्री से पूछा कि भगवान के बारे में जानना चाहता हूं मैं, तो बोले हाँ मेरे बारे में जानो तो भगवान के बारे में जानोगे, और ज्यादा जानना चाहते हो तो अपने बारे में जानो तो और ज्यादा जान जाओगे, और भी ज्यादा जानना चाहते हो तो हम सब के बारे में जानो, हम सब भगवान, ओपनली बोल रहा हूं। तो ओपनली इतने लाखों लोगों के बीच में क्या बोल रहा है, हम सब भगवान। तो लोग जा रहे हैं वहां पर, लड़की लड़कियां जा रहे हैं यंग, और नाच रहे हैं साथ में, तो क्या स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि वहां तो सब शून्य है, तो यहां नाच लो जितना नाचना हो। वहां तो सब शून्य है, वहां तो कुछ मजे है ही नहीं, है ना। इसलिए ओशो, ओशो भी क्या है, ये सब मायावाद के वो है, सब टुकड़े है। और आजकल लोग अगर मायावाद को जानते नहीं है, आदि शंकराचार्य है या रामकृष्ण परमहंस, ये सबको फॉलो नहीं करते, लेकिन सबके मन में यही है। शून्यवाद क्या है, मॉडर्न साइंस क्या है, शून्यवाद, शून्यवादी क्या बोलते हैं, मोक्ष मिल जाएगा तो हर चीज शून्य हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। मॉडर्न साइंस क्या बोलती है, सब कुछ मैटर से बना हुआ है, और मृत्यु होगी तो मैटर क्या होगा, अभी इंटीग्रेटेड है, अब फिर डिसइंटीग्रेटेड हो जाएगा और खत्म हो जाएगा, तो यही जीवन का सब कुछ है। लोग गाने बनाते ना, मिट्टी का शरीर है, क्या है, मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल गया, मतलब इसके बाद हमारा कोई जीवन नहीं, तो जितना भोग करना उतना करो। चार्वक ने क्या बोला है, चार्वक मुनि ने, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य किं पुनरागमन भवेत, है ना, ऋण लो, डाका डालो, लेकिन घी पियो, मतलब घी की बनी हुई चीजें खाओ, क्योंकि भस्मीभूतस्य देहस्य किं पुनरागमन भवेत, कि ये शरीर है भस्म मिल जाएगा, किं पुनरागमन भवेत, पुनरागमन तो पुनः तो हमको आना ही नहीं। तो मायावाद ने क्या किया, लोगों का इंटरेस्ट खत्म कर दिया स्पिरिचुअलिटी में, क्योंकि वहां जाके क्या मिलेगा, इनएक्टिव हो जाएंगे जब हमको, लेकिन पता है कि वहां जाके क्या मिलने वाला है, तो हम उसके लिए प्रयास करेंगे ना। और शून्यवाद ने क्या किया, मॉडर्न साइंस ने क्या किया, पुनर्जन्म को ही खत्म कर दिया, आत्मा ही को खत्म कर दिया, आत्मा भी खत्म, पुनर्जन्म भी खत्म, यही जीवन सब कुछ है। तो बस इस जीवन में आप जितना प्रयास कर सकते हो, जितना ऊपर जा सकते हो उतना प्रयास करो, है ना। जैसे हिटलर है ना, हिटलर है, लेनिन है, ये सब किससे प्रभावित थे, मॉडर्न डार्विनिज्म। और डार्विनिज्म क्या है, डार्विनिज्म अंत क्या, धीरे धीरे सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, धीरे धीरे स्ट्रगल करते जाएंगे, और जो इस जीवन के संघर्ष में जो ज्यादा मजबूत है, स्ट्रांग है, वो जीवित रहेगा, और जो वीक है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अंततः हम सब केमिकल्स से हैं, मिट्टी में हैं, और केमिकल्स में मर जाएंगे। तो जो हिटलर है उसने क्या, जो जर्मन है वो स्ट्रांग है, और जूस है वो वीक है, तो सारे जर्मन से इकट्ठे हुए और जूस को मारना चालू किया। तो फिलॉसफी कहां से आई, वो डार्विनिज्म से। और डार्विनिज्म कहां से है, शून्यवाद। अभी वो शून्य है, इधर भी शून्य है, इधर भी शून्य है, और थोड़ा इधर प्रगति चल रही है बस, अंततः दोनों साइड शून्य है, लेकिन इधर थोड़ा सा डेवलपमेंट है ना। तो आप सोच सकते हैं निर्विशेष और शून्यवाद कितना सा फैला हुआ, अगर इन दोनों चीजों से हम निकल जाए तो यस, है ना, यद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परम, कि भगवान का धाम वो वास्तव में जगह है, वो हमारा वास्तविक घर है, वहां वास्तव में हमारा परिवार है ना, वहां हर चीज जो भी हम यहाँ जो भी संबंध जो भी चीज देख रहे हैं वो अपने वास्तविक रूप में सच्चिदानंद रूप में भगवान के धाम में। तो इसीलिए ये मायावाद और शून्यवाद से इसको बहुत गहराई समझना है। इसके फेमिनिज्म इसमें कैसे मायावाद है, स्त्री पुरुष एक, वही मायावाद का परिणाम, सब एक है, सब आत्मा है। अगर आत्मा से माने तो सब एक है, सब आत्मा है, स्त्री का शरीर है, पुरुष का शरीर, लेकिन है सब आत्मा। मायावाद से माने तो सब ब्रह्म है, सारे ब्रह्म है, तो सब जीव एक है, तो स्त्री पुरुष भी एक है, तो यस आत्मा की दृष्टि से एक है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से अलग अलग है। तो रिपोर्टर ने पूछा श्रील प्रभुपाद से, तो प्रभुपाद आप मतलब स्वामी जी आप तो आपके शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्रियां हैं उनका संरक्षण होना चाहिए और वो कम बुद्धिमान है, तो इसको आप अमेरिका में कैसे बताएंगे। तो बोले प्रभुपाद बोले तो फैक्ट है, बोले नहीं अभी तो इक्वल राइट्स है ना मूवमेंट चल रहा है। बोले इक्वल कैसे हो सकते हैं, स्त्री केवल बच्चे को जन्म दे सकती है, पुरुष थोड़ी दे सकता है। अगर इक्वल राइट्स है तो एक एक बच्चा स्त्री दे, एक बच्चा पुरुष दे, इक्वलाइट से तो फिजिकली साइकोलॉजिकली दोनों अलग हैं, तो क्यों आर्टिफिशियली को एक करने का प्रयास कर, वो भी क्या है, वही मायावाद का परिणाम। फिर ये दरिद्र नारायण सेवा, ये दरिद्र नारायण सेवा भी कहां से है, मायावाद से है। तो मटेरियलिज्म है, फेमिनिज्म है, कम्युनिज्म है, जितने भी इज्म है, दिस इज्म दैट इज्म, प्रभुपाद बोलते हैं ना कि दिस इज्म दैट इज्म, ये सब कहां से आए हैं, मायावाद शून्यवाद से है ना। इसीलिए प्रभुपाद बोले कि मॉडर्न साइंस है ना, उसके मॉडर्न साइंस कैसे गलत है वो आपको प्रूफ करना है। तो कहने वाला शून्यवाद को हमको हराना है, हटाना है इससे। तो समाप्त करेंगे, हरे कृष्ण। किसी का प्रश्न है? कृष्ण तो जो ट्रेडिशनल मायावादी है वो तो कर्म फल को मानते हैं, वो पुनर्जन्म को ही मानते हैं, आत्मा को ही मानते हैं, जो शंकराचार्य के अनुयायी वो तो पुनर्जन्म मानते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि इच्छाओं से मुक्त करना है अपने आप को, इच्छाओं से मुक्त करते जाएंगे तो कर्म फल बनेगा ही नहीं। और जब जिस दिन इच्छाओं से मुक्त होंगे, कर्म फल से मुक्त होंगे, तो निराकार में लीन हो जाएंगे। लेकिन जो आधुनिक मायावादी है उनके लिए तो क्या है, तो मौज करो बस। बस ये हमारा रास्ता है। उसके बहुत तरीके हैं, कोई बोले कि सब अपने अपने रास्ते पे चलते हैं। कोई अगर ऐसे मायावादी मिले बोले तो सबका रास्ता है, क्रिटिसाइज मत कीजिएगा। बोले मेरा रास्ता क्या है, सबको मारना। तो मैं मारूंगा, मेरा ये रास्ता है, तुम्हारा दूसरा रास्ता है। अभी मैं अपने रास्ते को फॉलो कर रहा हूं, तुमको गुस्सा नहीं आना चाहिए। तो सब कुछ एक है, तो खाना परोसा जाएगा, आपकी प्लेट में स्टूल होगा, मेरी प्लेट में खाना होगा, क्योंकि सब कुछ एक है। ऐसे बहुत आसान उनको हराना, सब कुछ मिथ्या है। तो आपने एक लोहे का डंडा लिया, मिथ्या डंडा लिया, उनके मिथ्या सिर पे मारा, उसमें मिथ्या खून निकला, जिससे आपको मिथ्या दर्द हुआ। तो ये क्या है, बस उनकी वर्ल्ड जगलरी है बस। और जैनिज्म तो नास्तिक बात है, जो जैन धर्म वो तो नास्तिक ही, वो तो खुद भगवान बनना चाहते हैं। मायावाद का टच बोल सकते हैं, लेकिन प्योर फॉर्म में तो वो वेद भी में नहीं मान रहे हैं, भगवान नहीं मान रहे, खुद ही भगवान बनना चाहते हैं, वो तो पूरा नास्तिक धर्म।
देवी देवताओं की बात तो करते हैं, भगवान जी का
ये सब कुछ इस तरह से। अंदर अगर गहराई में जाएंगे, जो ऐसे जैन मुनि जो ऐसे बनते हैं, तो उनके धारणा ये होती है कि हम तपस्या करेंगे, अपनी इच्छाओं को खत्म करेंगे और स्वयं भगवान बन जाएंगे। और अभी जो राम है और कृष्ण है वो भी अभी तपस्या कर रहे हैं, वो भी जैन मुनि बनने का प्रयास कर रहे हैं। जो कृष्ण है उन्होंने बहुत गलत कार्य किए, अनैतिक कार्य किए, तो अभी नरक में हैं और धीरे धीरे जैन मुनि बन जाएंगे। कुछ जगह सही चल रहा है, मतलब प्रमाणिक इस सेंस में बोल सकते हैं, जैसे कई बार बताया कि आप कोई न्यूमेरिकल लगा रहे हैं, पहला स्टेप गलत हो गया, तो अभी आपने कितने पेज भर दिए, वो एक दूसरे से लिंक होंगे, लेकिन पहला स्टेप गलत है तो क्या हो गया, सब गलत हो गया। तो अभी उन्होंने आदि शंकराचार्य है वहीं से वो गलत चल रहा है, तो अभी वो भी परंपरा है, लेकिन आदि शंकराचार्य का कंट्रीब्यूशन वही है कि शास्त्रों में इन जनरल लोगों को श्रद्धा है, लेकिन मॉडर्न मायावादी उसी को हटा रहे, शास्त्रों को हटा रहे।
अभी की जो शंकराचार्य वो तो जैसे शास्त्रों की बेसिक फिलॉसफी, सब आत्मा है, सब मतलब जो जीव है सबके अंदर आत्मा है, परमात्मा, तो वो लोग जैसे क्रिटिसाइज करते हैं इस पॉइंट को कि जो ईसाई है वो गुरु बन गया, इसलिए जो अभी उसका शिष्य है वो सब ईसाई क्रिश्चियन बन गए, इसलिए वो लोग क्रिश्चियन में, मतलब लेकिन ये तो बेसिक फिलॉसफी तो ही गलत बता रहे हैं।
हाँ, मतलब बहुत कम ही बचे हैं, उनमें भी बहुत सारा ऐसा मिश्रण आ गया, मतलब बहुत जो एकदम एग्जैक्ट उनका होना चाहिए था। जैसे अभी जो शंकराचार्य ने स्टेटमेंट दिया कि साईं बाबा की पूजा गलत है, लेकिन रामकृष्ण परमहंस ने अच्छा कार्य किया, सब कुछ सिंथेसिस कर दी, तो अपने आप में दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए। तो डिटेल वो जो नॉलेज जो ज्ञान है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जैसे शून्यवाद है ना कि सब कुछ जीरो हो जाए, तो सब कुछ जीरो कैसे हो जाए उसके लिए बहुत सारे सिद्धांत है। कोई बोला नहीं इस तरह से जीरो होगा, कोई बोलेगा उस तरह से जीरो होगा, तीसरा बोलेगा इस तरह से जीरो होगा। अरे जीरो होगा उसके लिए क्या फिलॉसफी नहीं इस तरह से जीरो होगा, बोला उस तरह से जीरो होगा। तो ऐसे बहुत सारे सेक्ट बन जाते हैं बुद्धिस्ट में, उसमें विविधता आ जाती है।
एक क्वेश्चन है कि क्या भगवान राम ने कभी मीट ईटिंग किया था?
नहीं। कौन पूछ रहे?
कोई शंकर घोष।
भगवान राम तो कहाँ से सुना आपने? उनसे पूछिए
क्वेश्चन किया
नहीं, उनसे पूछिए कि आपने कहाँ से सुना है कि भगवान राम ने मीट ईटिंग किया।
क्वेश्चन लिख दिया
नहीं नहीं मैं पूछ रहा हूँ कि आपने ये कहाँ से सुना है कि भगवान राम ने मीट ईटिंग किया। अच्छा आपने लिख दिया, उनका आंसर नहीं आएगा।
वो एक ये है ना रामानंद सागर, उसमें श्री कृष्णा में एक एपिसोड आता है, उसमें ये प्रभु के जो पौत्र हैं भगवान कृष्ण के पुत्र, तो उनको जो उनको तो पालती है एक जो राक्षस कुल की होती है, इसके लिए वो उनको पालती बड़ा कर दी। तो वो वहाँ पे कहती है कि हम जा रहे हैं हिरण का शिकार करने, हम लेके आएंगे तो इसका स्वादिष्ट व्यंजन बनाएंगे, हम दोनों लेके आएंगे। तो शायद वो वहाँ से।
तो पहली बात तो ये है कि सुनी सुनाई बात पर या इधर उधर सीरियल देख रहे हैं उसको कोई ऑथोरिटी नहीं है, कोई प्रमाणिकता नहीं है, है ना। प्रभुपाद से पूछा एक बार कि भगवान राम ने मांस खाया है क्या, तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि भगवान राम विश्व रूप धारण कर सकते हैं, पूरे जगत को खा सकते हैं। मांस तो बहुत छोटी चीज है, मतलब तो पूरे जगत को खा जाए और तुम्हें भी खा जाएंगे वो। और फिर जहां जहां ऐसे इंसिडेंट आते हैं कि जब वो हिरण आया सोने का हिरण, तो सीता माँ ने बोला कि वो हिरण लेके आओ, वो हिरण मैं ले जाऊंगी और फिर अपनी माँ कौशल्या को गिफ्ट ऐसे उपहार में दूंगी। तो उपहार में देने के लिए वो हिरण के लिए भगवान को बोला कि आप हिरण को लेके आओ, लेकिन जब पता चला कि ये हिरण नहीं है तो राक्षस है, तो भगवान ने उसको मारा। तो लोग इंटरप्रिटेशन क्या निकालते हैं कि देखो जंगल में मांस खाते थे इसीलिए हिरण को शिकार करने गए थे। फिर जब वाल्मीकि रामायण में भी ऐसा आता है कि जब भगवान जाते हैं वनवास के लिए जाते हैं, तो वहां ऐसे कुछ स्टेटमेंट आते हैं कि जब मैं वनवास में जाऊंगा पूरी तरह से धर्म का पालन करूंगा, कोई भी आमिष आहार नहीं लूंगा। आमिष आहार मतलब मांसाहार, कोई मांसाहार। तो इसलिए बोलते देखो इसका मतलब भगवान मांस खाते थे। मतलब एक होता है इमरजेंसी ड्यूटी, इसको हम आपद धर्म, आपद धर्म। आपद धर्म में क्या होता है कि अगर ब्राह्मण है, अगर ब्राह्मण के ऑक्यूपेशन से उसका भरण पोषण नहीं हो पा रहा है तो वो निचले के धर्म फॉलो कर सकता है, क्षत्रिय बन सकता है या वैश्य बन सकता है, शूद्र कभी नहीं बनेगा। तो आपद धर्म में क्या होता है कि ऊपर का जो वर्ण है नीचे के वर्ण में आ सकता है। तो भगवान राम क्या बोलेगा, आपद इमरजेंसी भी पड़ा तब भी मैं आमिष आहार नहीं लूंगा। अगर वनवास के समय पर इमरजेंसी भी है, कुछ भी खाने को नहीं है, तो भी मैं आमिष आहार नहीं लूंगा। इस चीज को इंडिकेट करने के लिए उन्होंने ये स्टेटमेंट बोला, लेकिन उससे लोग इंटरप्रिटेशन क्या निकालते हैं क्योंकि भगवान राम मांस खाते थे। तो ऐसे सुनी सुनाई ऐसे तो जो ये शंकर घोष है उनके बारे में भी कोई स्टेटमेंट बोल सकता है कि आपका वो आप ये करते हो आपका ये अफेयर चल रहा है, तो ऐसे तो कोई किसी के बारे में बोल दे, लेकिन उसकी गहराई में जाके पता करना पड़ेगा ना सही क्या गलत है। तो ऐसे भगवान के प्रति आरोप लगते हैं। आप देख सकते हैं लोगों को कितना द्वेष है, जो भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम जो हर चीज में आदर्श है उनको भी लोग छोड़ते नहीं, उनको भी नहीं छोड़ते, इतने दोषी हैं।
उनका रिप्लाई टीवी पर उनके दोस्त ने देखा था, क्वेश्चन पूछा था और वो एक और क्वेश्चन पूछ रहे कि ये उनको पूछते हैं लोग, तो ये बड़े बड़े धाम का इतना बड़ा टारगेट क्यों रखने का, हायर प्लैनेटरी सिस्टम तक का टारगेट रखने, स्वर्ग लोग जाना है इसे, इतना बड़ा टारगेट जल करने का।
तो भगवत गीता में बताया गया छीने पुण्य मर्त लोके विसंति, है ना, कि स्वर्ग लोक में जाएंगे कुछ समय भोग करेंगे, पुण्य खत्म हो जाएगा और फिर वापस आएंगे। तो अगर हायर प्लैनेटरी सिस्टम में वहां पे जा रहे हैं तो वो भी क्या है, वो भी क्षणिक है, वो भी कुछ समय के लिए, वहां भी बहुत सारी चिंता है, वहां भी बहुत भय है। तो बुद्धिमान व्यक्ति झूले में ऊपर ऊपर नीचे नहीं झूलता है, वो झूले से निकल कर अपने घर जाना चाहता है। तो हम स्वर्ग में भी चले गए, वहां भी बहुत सारी चिंता है, वहां भी मृत्यु होने वाली है, वहां भी डर होगा, तो इसलिए वो भी वहां पे भी जाना क्या है, व्यर्थ है।
सबके टाइम है, जैसे आदि शंकराचार्य थे तो उस समय उन्होंने अपने सामने वाले को शिष्य को इतना बताया तो हुआ नहीं कि ये जो फिलोसफी है पर्टिकुलर टाइम के लिए, उसको आगे नहीं बढ़ाना, अभी परिस्थिति ऐसी तो
नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो तो जो असुर है उनको विमोहित करने के लिए फिलोसफी। बताया ना, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते, उसको भी उन्होंने इंटरप्रिटेशन कर दिया उनके शिष्य ने, कि जो मूर्ख लोग हैं वो गोविंद का भजन करते हैं। अंतिम में उन्होंने लिखा भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मते, कि ये जो मैंने बताया इसको छोड़ो और गोविंद का भजन करो। तो बोले कि मूर्ख लोग ही गोविंद का भजन करें, तो हिंट तो दिया उन्होंने। ओके, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता यथारूप की जय।